हाँ स्नान करते हैं लेकिन उनका प्राकट्य दिवस है, उनका आविर्भाव दिवस है, वार दिवस है। तो भगवान जगन्नाथ का ये प्राकट्य दिन है, तो उन्होंने अपना शरीर त्यागा जगन्नाथ दिन, जगन्नाथ भगवान के प्राकट्य दिन पर। तो जब आप जाओगे उधर तो उनको बताना कि शुभ दिन है। खैर शरीर छोड़ा वो दुख की बात है, लेकिन छोड़ा तो ऐसे अच्छे दिन पर छोड़ा, भगवान का जन्मदिन पर, आविर्भाव दिन पर। जैसे हम लोग कहते हैं ना जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, नरसिंह चतुर्थी, सब बहुत शुभ दिन होता है ना, तो ये भी बहुत शुभ दिन है, भगवान का प्राकट्य का दिन है ना। तो वो बता देना। तो स्नान पुण्य के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? क्या क्या होता है, कुछ बोलिए, किसको कुछ बोलना है? स्नान पूर्णिमा, स्नान यात्रा, बोलते जाइए, आपको क्या क्या जो भी कुछ मालूम है बोलिए, फिर बचा हुआ मैं बोलूँगा।
स्नान करने के बाद बुखार,
स्नान करने के बाद भगवान को बुखार आता है। कैसे? भगवान को भी बुखार आता है तो हमको आता है ना बुखार, भगवान को कैसे आता है? क्योंकि उनको एकांत में रहना है। क्यों?
साल भर वो सब भक्तों को दर्शन देते हैं, दिन रात भर दर्शन देते हैं, तो कभी उनको भी थोड़ा रेस्ट
और क्या, बस इतना ही मालूम आपको स्नान यात्रा के बारे में?
भक्तवत्सल गुण को प्रस्तुत करने के लिए भक्त को इच्छा था वो गजवेश
कौन सा क्या
महाराष्ट्रीयन भक्त जी कह रहे थे, वो गणेश जी के भक्त थे तो उनको दर्शन।
ऐसा महाराष्ट्र के ऐसा कुछ नहीं, कोई थे, अभी ये महाराष्ट्र का कब आया मुझे पता अभी कोई तो थे गणेश जी के भक्त थे, उपासक थे, तो उनका इच्छा था, ऐसा एक लोक कथा है उधर से बोलते हैं। उन्होंने सोचा था कि जगन्नाथ गणेश है, क्योंकि जैसे सबकी धारा विचारधारा वैसे वैसे जाते हैं, हालांकि ये तो स्पष्ट है कि जगन्नाथ कृष्ण है। क्यों स्पष्ट है कि जगन्नाथ कृष्ण है? किन चीज़ों से हम जान सकते हैं कि वो कृष्ण है? सुदर्शन चक्र है, फिर बलराम उनके साथ में है, और सुभद्रा उनके भाई बहन साथ में है, और क्या, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु को नहीं भी लिया तो ऐसे ही केवल उनको देख के।
वो गजपति की कथा, मतलब आता जो भक्त की कथा संगीत है, ते भक्त पिता गेल्यानंतर पहाड़ तीसरे जगन्नाथपुरीला गेल्यानंतर मुक्त होता, पण सगळे वापस यायला लागले, त्यांची काय इच्छा होती की सगळे वापस कसे येतात, मुक्त कसे होत नाही, जगन्नाथपुरीला मुक्ती धाम पण म्हणतात।
पण जगन्नाथ कृष्ण का आहे ते प्रश्न आहे, कोणी म्हणतं गणेश आहे, कोणी म्हणतात हे आहे, कोणी म्हणतात ते
जगाचे
नाथ. तसे मी म्हणतो की गणेश जगाचे नाथ आहे. कृष्ण आहेत, कृष्ण आहेत म्हणून कसं आम्ही समजू? शंख कथा पद्मकोण गणेश धारण करतात काय? नाही. आणि बलराम कोणाचे भाऊ आहेत आणि सुभद्रा कोणाची बहीण आहे? कृष्णाची. सुदर्शन चक्र कोणाचं आहे? कृष्णाचं.
सावले रंग के
है. सावले रंग के है. और कोई बात जिससे हम समझ सकते हैं कि जगन्नाथ श्री कृष्ण? ये भी सही बात है कि चैतन्य महाप्रभु ने भी घोषित किया. और वो तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है. और ऐसा कोई
नारद मुनि की कथा में जब वो लीला में हम सुनते हैं, कृष्ण कथा सुन रहे थे और इस भाव में महाभाव प्रकट हो गए, तो नारद जी का भी इच्छा था वो रूप जगत में प्रकट करवाने के लिए. इससे भी साबित होता है कि वही कृष्ण जगत.
तो जगन्नाथ जी के विशेष रूप के प्राकट्य के पीछे ये लीला है ना, छोटी सी लीला संक्षेप में बताएंगे. द्वारका में सब लोग वृंदावन की लीला सुनना चाहते थे, तो कृष्ण ने बोला ठीक है, लेकिन रोहिणी देवी ने बोला ठीक है मैं सुनाती हूँ, जो बलराम की माता है ना रोहिणी, तो वो सुनाने लगे. तो उन्होंने कहा लेकिन देखो कृष्ण बलराम को बिल्कुल आने नहीं देना अंदर, क्योंकि वो आएंगे तो इतना भाग दौड़ हो जाएंगे कि द्वारका छोड़ के वृंदावन चले जाएंगे. तो फिर उन्होंने क्या किया, सुभद्रा देवी को बाहर रखा दरवाजे पर कि कृष्ण बलराम आएंगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं उनको. तो जब कृष्ण बलराम आए, उनको पता चला कथा चल रही है ना, हमको भी जाना चाहिए, लेकिन दरवाजे पर सुभद्रा खड़ी थी. सुभद्रा जैसे खड़ी थी तो सब अंदर की कथा सुनाई दे रहा था, तो वहाँ के देख के वो भाग भोर हो गए, रह गए. इधर कृष्ण बलराम आए, वो भी सुनने लगे, तो सुनते सुनते उनके आँख बड़े हो गए, उनके सो अष्ट सात्विक विकार जो है भक्ति के लक्षण सब, प्रेम के लक्षण, भक्ति नहीं प्रेम के लक्षण सब प्रकट हुए, हाथ अंदर गए और ऐसा रूप हुआ. उस समय नारद मुनि आए, तो नारद मुनि ने देखा और भगवान से प्रार्थना किया कि आप इसी रूप में प्रकट होना. तो फिर इसलिए ये भगवान जगन्नाथ का विशेष रूप है, कृष्ण का विशेष रूप जगन्नाथ के रूप में, विरह का रूप. जब वृंदावन से विरह का अनुभव करते हैं तो वो जगन्नाथ का रूप है. जब राधारानी से विरह में रहते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु का रूप. और फिर आगे चल के हम वो इंद्रद्युम्न महाराज की कथा पता है, कौन से विग्रह को देखने के लिए गए थे वहां पे? नीलमाधव. तो नीलमाधव कौन है? कृष्ण है. तो वही नीलमाधव अप्रकट हुए और फिर जगन्नाथ के रूप में पुनः प्रकट हुए, तो वही नीलमाधव जगन्नाथ है, तो जगन्नाथ कृष्ण है. ऐसे बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के जो 100 साल होते हैं, जो ब्रह्मांड की जीवन की अवधि होती है, उसमें पहले जो 50 साल है उसमें जो प्रति जो एक प्रधान देव होते हैं वो है नीलमाधव, और ब्रह्मा जी के बाद वाले 50 साल में जगन्नाथ. तो वही नीलमाधव अभी जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं. तो ब्रह्मा जी के 50 साल पूर्ण हो गए और 50 साल की जो जन्मदिन हो गया उसके बाद ये पहला दिन अभी चल रहा है, 91 बोलते हैं ना, 91 साल का पहला दिन ये अभी चल रहा है ब्रह्मा जी का, 91 जो 91 वर्ष के का पहला दिन है, तो 50 साल पूर्ण हो गए अभी ब्रह्मा जी के, अभी अभी पूरे हो गए, अभी अभी मतलब बहुत लाखों साल हो गए लेकिन ब्रह्मा जी के लिए अभी अभी हो गए। इसको द्विपरार्ध बोलते हैं, परार्ध मतलब ब्रह्मा जी का आधा दिन, परार्ध तो प्रथम परार्ध में नीलमाधव, दूसरे परार्ध में जगन्नाथ, तो द्विपरार्ध मतलब दो परार्ध ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु। तो और एक भी क्या कारण है जिससे हम समझ सकते हैं कि जगन्नाथ कृष्ण है?
देवतागण जगन्नाथपुरी में जब देखते हैं ऊपर से तो उनको सबके चार हाथ में दिखाई
देते, ठीक है, लेकिन और वहां हमको देखने से क्या पता चलता?
भगवान का रूप जो है वो जैसे हमारे यहाँ ये होती है तो भगवान की वो आंख कभी बंद नहीं होती, भक्तों के ऊपर हमेशा कृपा का वर्षा करते
हैं। तो किसी के भी मूर्ति में आप देखे होंगे कि बंद नहीं होते,
जगन्नाथ भगवान की जो आंख है बड़े बड़े
बड़े बड़े हैं लेकिन वो कृष्ण क्यों है, ये बात, ये प्रश्न। अच्छा, उत्सव विग्रह के नाम पता है ना, उत्सव मूर्ति, उत्सव मूर्ति मुझे काय
परम दयाल
जो है, जो मूर्ति क्या,
जो विग्रह को मंदिर के गर्भ गृह से बाहर उत्सव में लेके जाए,
तो उनके लिए विशेष मूर्ति क्यों चाहिए बाहर ले जाने के लिए, किसी शोभा यात्रा है या कुछ, जैसे कृष्ण बलराम के, राधा कृष्णा या भगवान नारायण के छोटे छोटे मूर्तियाँ होती है जो बाहर पालकी में बिठा के ले जाते हैं, तो ऐसी मूर्ति की आवश्यकता क्यों होती है?
हमारे साथ आदान प्रदान करने के लिए बड़ा विग्रहों की
क्यों नहीं
उठाना, स्नान करना।
तो बड़े विग्रह को पालकी में ले जा सकते हैं क्या? पालकी में जैसे रंगनाथ जी का मंदिर है, विग्रह यहाँ से वहां तक सो रहे हैं ऐसे करके, उनको उठा के ले जाएंगे क्या पालकी में? संभव नहीं। और कई विग्रह होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, खड़े खड़े होते हैं, उनको थोड़ी उठा के ले जा सकते, और इतने छोटे इतने बड़े नहीं भी हैं तो कहीं कुछ हो जाए, ठोकर लग जाए, कुछ हो जाए, हाँ अच्छा नहीं। और मंदिर खाली नहीं होना चाहिए। एक बार भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो फिर उनको वहाँ से हिलाना नहीं है, कभी नहीं हिलाते उनको। जगन्नाथ भगवान एकमात्र भगवान है जो हिलते हैं, नहीं तो भगवान के जितने भी रूप हैं, विग्रह हैं, उनको एक बार प्राण प्रतिष्ठा कर लिया तो उस स्थान से हिलाना नहीं है, यदि हिलाया तो दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा। तो इसलिए बाहर जब ले जाते हैं तो उनको पालकी वगैरह में ले जाते हैं शोभा यात्रा के लिए, ब्रह्मोत्सव के लिए, तो ऐसे कोई विशेष विग्रह मूर्ति चाहिए जो छोटे हों, इनको आसानी से उठाकर ले जाया जा सकता है, उनको उत्सव मूर्ति बोलते हैं, जो उत्सव में उनको बाहर ले जाते हैं, कभी विजय विग्रह भी बोलते हैं उनको। तो साधारण जैसे हमारे राधा गोकुल आनंद हैं तो वो भी विग्रह छोटे हैं, लेकिन जब हमारे बड़े विग्रह आएंगे राधा कृष्ण के तो ये हमारे उत्सव मूर्ति बन जाएंगे, तो फिर ये बाहर जाएंगे। तो राधा गोकुलानंद है बड़े विग्रह और उनके उत्सव विग्रह कौन है? राधा गोकुलानंद है छोटे, परंतु जगन्नाथ भगवान के उत्सव मूर्ति कौन से? जगन्नाथ इला
गोविंद गोविंद
मदन मोहन, मदन मोहन कौन है?
कृष्ण,
कृष्ण है। तो जब किसी विग्रह के उत्सव विग्रह मदन मोहन हुए जो कृष्ण है, फिर मूल मूर्ति क्या कृष्ण नहीं है? बिल्कुल है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि जगन्नाथ वास्तव में कृष्ण ही है। परंतु थोड़े ऐसे लोग भारत में जानते हैं ना, सब लोग खिचड़ी है ना भारत में, सब लोग अपना अपना विचारधारा लेके चलते हैं ना। तो कोई सोचते हैं जगन्नाथ गणेश है, कोई सोचते हैं कुछ है, कोई सोचता है कुछ। अरे कब भगवान बड़े कृपालु हैं, सबको स्वीकार करते हैं। तो ऐसे एक बार कोई व्यक्ति आए थे, उन्होंने सोचा कि जगन्नाथ गणेश है, जाके देखा कि अरे गणेश नहीं है, अरे अरे, वो निकल गए निराश होके। तो भगवान उनके स्वप्न में आए कि ना आओ वापस आओ वापस आओ। फिर वो स्नान यात्रा के दिन पाए तो उनको वो रूप देखा, तो उसके बाद से फिर वो उनको करना शुरू हो गया, ऐसा बोलते हैं। परंतु वास्तविक कारण ऐसे बहुत सरल है। इसके पीछे कारण क्या है कि जब भगवान के हरि बोल देवक के तनय वो हमारे बैल सेवक जोड़ी रुक्मिणी रमन प्रभु और देवक के तनय हमारे गो प्रेमी भक्त दोनों, तो साधारणतः भगवान को नहलाते हैं ना मंदिर में, नहलाते हैं कि नहीं, अभिषेक करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अभिषेक। तो वैसे तो कितने बार करते हैं अभिषेक?
प्रतिदिन,
प्रतिदिन, प्रतिदिन करते हैं। अभी जब बड़ी मूर्ति होते हैं तो क्या बड़ी मूर्तियों का अभिषेक रोज करते हैं? क्यों नहीं? उत्सव मूर्ति का करते हैं। ये दूसरा कारण है उत्सव मूर्ति होने के लिए कि जब अभिषेक किया जाता है तो छोटी मूर्तियों का किया जाता है। बड़े मूर्ति का कैसे करेगी? इतना सब दही, इतना ये रोज 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 इतना बड़ा चाहिए उसके लिए, इतना किलो किलो लीटर लीटर भर के लाओ, फिर उनको धो पोछो, फिर आधा दिन तो उसमें निकल जाएगा, फिर दर्शन नहीं दे पाएंगे भगवान। इसलिए उत्सव मूर्ति छोटे होते हैं, जल्दी जल्दी उनका हो सकता है। तो ये दूसरा कारण है कि उत्सव मूर्ति होते हैं। तो जब बड़े बड़े विग्रह होते हैं, चाहे वो कृष्ण बलराम के हों, गौर निताय के हों, राधा कृष्ण के हों, तो उनका रोज मंदिर में अभिषेक होता है, लेकिन उत्सव मूर्ति के होते हैं, मूल विग्रह के नहीं। क्योंकि उत्सव मूर्ति और मूल मूर्ति में कोई अंतर नहीं है, वो अभिन्न है। इसलिए जब उत्सव मूर्ति का अभिषेक किया जाता है तो ऐसे समझा जाता है कि मूल मूर्ति का भी अभिषेक हो गया है। परंतु जो हमारे मूल मूर्ति होते हैं वो साधारणतः कौन से पदार्थ से बनाए जाते हैं?
संगमरमर।
हाँ,
संगमरमर मार्बल।
हाँ, मतलब पत्थर के या
काष्ठ लकड़ी के,
लकड़ी या धातु,
धातु
नहीं, लकड़ी नहीं, धातु या पत्थर साधारणतः। लकड़ी केवल जगन्नाथ होते हैं बड़े मूर्ति, एक आध बार कभी गौर निताय के भी होते हैं,